दहेज के दानव से निबटने की कोशिशें दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरीकों से होती रही हैं। भारत में इसके लिए बड़ा कड़ा कानून भी है, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी अब कुछ एथनिक समुदायों में दहेज का प्रचलन देखने में आता है। और इसी से निबटने के लिए मेलबर्न शहर में पहला एंटी डाउरी समिट यानी दहेज विरोध या दहेज का उन्मूलन करने का समिट हो रहा है। इस समिट के आयोजकों में शामिल हैं डॉक्टर राज खिल्लन, जो ओवरसीज मेडिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और मर्सी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर खिल्लन, एसपीएस रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू जय भारद्वाज जी, एंड थैंक यू एसपीएस हिंदी टू गिव मी द टाइम और इसके बारे में बात करने के लिए। थैंक यू
सर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहेज के खिलाफ सबमिट करने की ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न जैसी जगह पर जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए जी, जरूरत आप इस तरह से कह लीजिए कि जैसे जैसे हिंदुस्तानी अपने लोगों की यहाँ पे तादाद बढ़ रही है तो दहेज के केसेस भी बढ़ रहे हैं और उससे पीड़ित जो हमारी फैमिली है वो भी, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसमें यहाँ पे मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों में ही नहीं है, हमारे जितने भी साउथ एशिया की कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इधर मिडल ईस्ट की कंट्री है, टर्किश, आपके लेबनान, सूडान, इन लोगों में भी वैसी ही प्रथा है और इन लोगों की तादाद भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो जब लोगों की तादाद बढ़ रही है तो उनसे उनकी जो अच्छाइयों के साथ साथ उनकी बुराइयां भी हमारे साथ साथ आती हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो फैमिली के लोग हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, उनको इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे बच्चों पे भी उनका, जब जो वो देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए एज ए डॉक्टर मेरी एक मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी लोगों को अवेयर किया जाए और साथ साथ उन लोगों को बताया जाए कि जो चीजें इंडिया में अभी लॉ के अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट लॉ है, उन चीजों को यहाँ पे ना करें क्योंकि हो सकता है आगे यहाँ पे भी ऐसे लॉ बन जाएं और अपनी अपनी फैमिली को हम लोग इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, मैं जानना ये चाहूंगा कि आखिर हिंदुस्तान में या और देशों में, साउथ एशिया में, जिसे हम डाउरी दहेज मानते हैं, वो है पैसे का लेन देन या फिर बड़े बड़े वाइट गुड्स का लेन देन जो होता है, ज्वेलरी का लेन देन, अगर ऑस्ट्रेलिया के टर्म में देखा जाए तो यहाँ उस दहेज की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये दहेज लिया दिया जा रहा है?
देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि दहेज को आइडेंटिफाई करना। इवन अगर आप इंडिया में भी रहते हैं, मैं और आप दोनों इंडियन, हम देखते हैं कि इंडिया में भी ये लॉ अगेंस्ट 1961 में हम लोगों ने एक लॉ इंडिया में लागू हुआ था कि दहेज जो है इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, बट अभी भी अगर आप जानते हैं कि छोटी जगह में प्रिवलेंट है, लोग करते हैं क्योंकि एक हमारा जो ट्रेडिशन इतना जड़ तक बैठा हुआ है कि हमारी लोगों से एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है तो मुझे तो देना ही है, लड़के की शादी हो रही है तो मुझे तो लेना ही है। तो वो लॉ एक जगह हो जाता है और एक हमारा ट्रेडिशन, हमारी वो एक तरफ एक्सपेक्टेशन एक तरफ आ जाती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके दहेज की रूप हर जगह बदल देती है। पहला रूप होता है कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, खुशी से आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप नहीं दोगे तो इसका मतलब मैं खुश नहीं रहूंगा। पैसे में, जैसे आपने बोला कि यस पैसे में होता है या ज्वेलरी के रूप में होता है, यहाँ पे भी वही चीजें उसी रूप में ही होती है, होता है कि उसका रूप थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो कैश मनी यहाँ पे नहीं आती है, वो कैश मनी इंडिया में उनके माँ बाप को दे दी जाती है। तो लड़का लड़की यहाँ पे आ गए, कैश मनी आपने इंडिया में पहुंचा दी, ये एक एक उसका रूप है। या दूसरा रूप होता है कि इतने पैसे बैंक, यू नो, लड़के के बैंक के अकाउंट में डाल दो। तीसरा रूप है कि उसकी सारी ज्वेलरी इकट्ठी करके आप जो है लड़की साथ में लेके यहाँ, लड़का लड़की साथ में लेके यहाँ पे आ गए। तो ये उसके नए नए रूप है। यहाँ पे यह कि फर्नीचर के रूप में नहीं होता है, मगर बाकी सारे रूप में जरूर होता है।
सर एक और चीज है, इस दहेज का जो दुष्प्रभाव है, खराब असर जो है, वो क्या होता है?
देखिए, इस दुष्प्रभाव जो जो हम एज ए डॉक्टर अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं जब बच्चे देखता हूँ, क्योंकि मैं बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मेरे पास बच्चे आते हैं कि ये बच्चा ठीक से बोल नहीं रहा, ये बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। तो जब उनकी पूरी डिटेल फैमिली हिस्ट्री की ली जाती है, तो उससे पता चलता है कि एक बच्चा जो कि अपनी माँ को रोजाना मारपीट करते हुए देखता है, वो समझता है कि ये नॉर्मल चीज है। वो भी उतना ही हाथ उठाता है अपनी दूसरे बच्चों के ऊपर, माँ के ऊपर, स्कूल के ऊपर। तो वो जो दुष्प्रभाव बच्चे के बिहेवियर के ऊपर पड़ता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं एज ए पीडियाट्रिशियन देखता हूँ। दूसरा दुष्प्रभाव जो बाकी एज ए जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर देखते हैं, जन साइकेट्रिस्ट देखते हैं, वो ये है कि मानसिक तनाव एक लड़की के ऊपर हमेशा बना रहता है, उसकी मानसिक संतुलता बिगड़ जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जनरल एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, हर रोजाना एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़की का बहुत कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम उसकी बहुत कम हो जाती है, कुछ भी काम करने की शक्ति उसकी जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब मल्टीपल साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसमें आनी शुरू हो जाती है। ये तो हम बात कर रहे हैं जो कि वो मेंटल टॉर्चर से होकर गुजर रही है, बट इसके अलावा इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है फिजिकल टॉर्चर पे भी हो सकता होता है।
जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम चीज है, इस समिट में आप लोग सॉल्यूशंस और अल्टरनेट एवेन्यूज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके निजी तौर पर अगर मैं पूछूं, आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं इसका, संक्षेप में जानना चाहूंगा।
देखिए, संक्षेप में तो मैं ये कहूंगा कि एक तो ये अगर ऐसा प्रोविजन हो जाए कि हम इंडिया की तरह से ही यहाँ पे एक लॉ बन जाए कि जिससे कि डॉरी इज ए क्राइम। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि यहाँ के लीगल सिस्टम में जैसे जैसे पुलिस है या जुडिशियल सिस्टम है, उनको अवेयर करने की बहुत जरूरत है। अलोंग विद दैट हमारी कम्युनिटी को तो जरूरत है ही है, यहाँ की कम्युनिटी को भी, लोकल कम्युनिटी को जरूरत है कि दहेज क्या होता है, क्योंकि अगर कोई लड़की जाती है पुलिस के पास रिपोर्ट करने के लिए, उनको पता ही नहीं है कि वो दहेज क्या चीज है, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग। तो उनकी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, लॉ बनाना जरूरी है, या हम इसको किसी तरीके से इस जो बंदे ये करते हैं उनमें वीजा में कुछ ऐसी कंडीशन रखी जाए कि जिसको कि उनको एक फियर फैक्टर रहे कि अगर मैं दहेज लेता हूँ या दहेज लेता पकड़ा गया या मेरे को कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे वीजा के ऊपर कोई कंडीशन है जो कि कल मेरे ऊपर बुरा प्रभाव कर सकती है।
डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि बुधवार 14 दिसंबर को आपका ये समिट बहुत सफल होगा और एक सॉलिड, एक ठोस सॉल्यूशन सामने आएगा।
जी, हम भी यही आशा करते हैं और हमारी बहनों और बेटियों के लिए उनका फ्यूचर आगे ज्यादा सुरक्षित हो पाएगा। थैंक यू।